الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک کی فضیلت ہم سنیں گے. سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم, مفسر قرآن, محدث اور ولی کامل ہیں, اور آپ کی کتاب ہے شرح الصدور, کمال کی کتاب ہے. میں مشورہ دوں گا اس کو ضرور پڑھیں, حاصل کریں. یہ یوں سمجھیے بیماری سے لے کر انتقال ہونے تک اور پھر قبر کے معاملات تک, سکرات کے معاملات, قبر کے معاملات تک ایک ایسی کتاب ہے, اور اس میں ایسے ایسے آپ نے سچے واقعات اور روایتیں نقل کی ہیں کہ انسان کو یہ جو آخرت کا ٹریول ہے, جو لاسٹ ٹریول ہے, اس کی سمجھ بھی آتی ہے اور پھر اس میں کیا کیا اس نے کرنا ہے وہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے. تو شرح الصدور یہ کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, بڑی کمال کی کتاب ہے. اسی کتاب میں ایک بڑا عجیب اور بڑا ہی یوں سمجھے ایمان افروز واقعہ آپ نے لکھا. حضرت ابان بن ابو عیاش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, جب حضرت مورک اجلی رحمۃ اللہ تعالی کی وفات ہوئی اس وقت میں آپ کے قریب موجود تھا, اور جب انہیں کفن دیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سر سے ایک نور نکلا جو روف کو, چھت کو چیرتا ہوا اوپر چلا گیا. ایسا ہی نور ان کے پاؤں کے پاس سے نکلا, اور ایسا ہی نور ان کی باڈی سے ان کے جسم کے درمیان سے نکلا, یعنی تین جگہوں سے پارٹ آف دا باڈی سے نور نکل کر اوپر کی طرف گیا. ابھی ہم حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہو رہا ہے. تو حضرت مورک نے اپنے چہرے سے کفن ہٹایا اور کہا, کیا تم لوگوں نے کچھ دیکھا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں, ایسے تین نور بلند ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. آپ نے فرمایا, یہ سورہ سجدہ ہے جو میں ہر رات پڑھتا تھا, اس کی ابتدائی 14 آیات کا نور میرے سر سے, آخری 14 آیات کا نور میرے قدموں سے, اور آیت سجدہ کا نور جسم کے درمیانی حصے سے بلند ہوا ہے, اور یہ سورت میری شفاعت کرنے کے لیے آسمانوں کی طرف گئی ہے, اور سورہ ملک اس وقت میری حفاظت کر رہی ہے. اتنا کہنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. قرآن کس طرح مرنے کے بعد حفاظت کرتا ہے, کس طرح عذاب سے بچاتا ہے, اور کچھ صورتیں تو وہ کمال کی صورتیں ہیں جو خاص یوں سمجھیے اس کے جو بینیفٹس ہیں اس میں ایک بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. ورنہ غور کریں, مرنا تو بڑا مشکل کام ہے, روح نکلنے کی سختیاں فرمایا روایتوں میں تلوار کے ہزار وار سے زیادہ سخت تکلیف ہے, پھر دنیا چھوٹنے کا غم, عزیز رشتہ داروں, آل اولاد سے جدائی کا صدمہ, اس کے ساتھ ہی قبر کی تنہائی, وحشت اور اندھیرے کا سامنا, ہزار طرح کی مشکلات ہیں جب بندے کی روح جو ہے اس کی باڈی سے جدا ہوتی ہے. مرنا تو ہم سب نے ہے, مگر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر و عافیت والی, کلمے والی, ایمان والی موت نصیب فرمائے. اب ذرا غور کیجئے, اپنی جگہ رکھ کر سوچئے کہ ہماری روح بدن سے جدا ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ ہی قرآنی صورتیں ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں. آئے ہائے, اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں, کوئی صورت عذاب سے بچا رہی ہو, کوئی مبارک صورت ہمیں وحشت و تنہائی سے بچانے کے لیے دل بہلا رہی ہو, تو سوچیں پھر کتنا لطف ہوگا. تو قرآن سے جن کی دوستی ہے, تلاوت قرآن جو شوق سے کرتے ہیں, پورا سال قرآن سے اٹیچ رہتے ہیں, انہیں مبارک ہو. اب یہاں ایک پہلے وسوسے کا علاج, کیونکہ پرابلم یہ کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے نا تو کچھ لوگوں کو میمز بنانے والوں کو یا کچھ لوگوں کو سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ یار مرنے کے بعد کوئی کیسے جواب دے سکتا ہے, مرنے کے بعد کوئی کیسے زندہ ہو سکتا ہے, یہ تو جناب مولانا صاحب نے عجیب سا واقعہ سنا دیا. تو یہاں بھی پرابلم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اگر قرآن پڑھیں تو قرآن پاک میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کی قدرت سے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, رب چاہے تو اپنے بندوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے. تو قرآن میں کتنے واقعات ہیں, اب ذرا میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. پہلے سے پارے میں जो माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं तफसीर के साथ वो मेरी बात को अग्री करेंगे। पहले सिपारे में 70 अफराद के मरकर जिंदा होने का वाकया है। पहले ही सिपारे में एक शख्स का जो कत्ल हुआ था, जिसकी वजह से सूरह बकरा, पूरा नाम ही सूरह बकरा है, वो कत्ल होने वाले ने फिर जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया। दूसरे सिपारे में 70,000 अफराद के मरकर दोबारा जिंदा होने का वाकया मौजूद है, जो हजरत हिस्कीर अलैहिस्सलाम की कौम के लोग थे। तीसरे सिपारे में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का 100 साल तक सोए रहने के बाद दोबारा जिंदा होने का वाकया मौजूद है। 15वें पारे में असहाबे कहफ का 300 साल से ज्यादा अरसे तक गार में सोए रहने का और दोबारा जिंदा किए जाने का वाकया मौजूद है। तो ये मेरी और आपकी अकल के लिए मुश्किल है, मेरे रब के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। वो चाहे तो अपनी कुदरत का नजारा दिखाए, ये मुर्दा भी जिंदा होकर कुरान की सूरतों के फजाइल बताकर फिर कब्र में चला गया, लेकिन उसने हमें ये पैगाम दिया। तो पता चला कि कुरान पाक एक कमाल का वजीफा है। कुरान कैसा नूर है कि जो उसे थाम लेता है वो दुनिया में भी उसे काम आएगा और कब्र में भी काम आएगा। तो पता चला सूरह मुल्क और सूरह सजदा, ठीक है, पहला वजीफा या पहली ब्लेसिंग ये ले लें कि ये लंबी सूरतें ज्यादा नहीं हैं। रात को सोने से पहले इन दोनों सूरतों की तिलावत करना सुन्नत मुस्तफ़ा है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की हदीस है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत किए बगैर आराम नहीं फरमाते थे। अल्लाह करे कि हम रोज़ाना रात सोने से पहले ये दो सूरतें पढ़ें। और सूरह मुल्क की तो क्या बात है, आज स्पेशली मेरा टॉपिक जो है वो सूरह मुल्क है। सूरह मुल्क 29वां पारा जहाँ से स्टार्ट होता है, ये वहां से और तकरीबन 3 मिनट लगते हैं। आप पढ़ के देखें, अगर प्रॉपर तलावत करें तो यू रिक्वायर ओनली 3 to 4 मिनट टू रिसाइट सूरह मुल्क। मगर सुभान अल्लाह, 2 रुकू हैं, 30 आयतें हैं। इसको सूरह मुंजिया यानी नजात दिलाने वाली सूरत, सूरह मानिया यानी अजाब रोकने वाली सूरत, सूरह शाफिया शफात करने वाली सूरत, सूरह मुजादिला यानी अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ने वाली सूरत, और सूरह मुल्क, ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में 30 आयतों की एक सूरत है, वो अपनी तिलावत करने वाले की शफाअत करेगी यहां तक कि उसे बख्श दिया जाएगा। और वो कौन सी है? आका ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये वो सूरत है। 4 मिनट्स रिक्वायर्ड। हम सोने से पहले कुछ लोग शावर लेते हैं, कुछ लोग ड्रेस चेंज करते हैं, कुछ लोग ब्रश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लोग करते हैं, दवाई खाते हैं, बहुत सारी रूटीन्स हैं जो सोने से पहले बंदा कर रहा होता है। तो क्या 4 मिनट निकाल कर हम सूरह मुल्क नहीं पढ़ सकते, जो इंशाल्लाह हमारी कब्र में शफात करेगी? सूरह मुल्क का एक नाम मुजादिला, झगड़ा करने वाली सूरत है ना। सुनिए, रिवायत में है सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले की तरफ से झगड़ा करेगी और उसे जन्नत में दाखिल कर देगी। ये झगड़ा वो वाला झगड़ा नहीं होगा जो आपस में हम लड़ते हैं, एक मान वाला भी तो होता है ना कि नहीं या अल्लाह मैंने इसकी बख्शिश करवानी है, मैंने इसकी शिफात करवानी है। अल्लाह की बारगाह में ये जो झगड़े के अल्फाज आए हैं ना कि अल्लाह की बारगाह में वो जो मान वाली जिद होगी, ये सूरह मुल्क के बारे में भी आई। और मुझे एक और रिवायत याद आई, हदीस का खुलासा है, चले ये भी आज याद अचानक याद आ गई, तो बड़ी प्यारी हदीस है, निसाई शरीफ में ये हदीस मौजूद है और भी किताबों में है, कि क़यामत के दिन, हदीस का खुलासा है कि वो नेक अफराद जिनको अल्लाह करीम अपने करम से जन्नत में दाखिल फरमा देगा, उनमें से कुछ लोग वो होंगे जो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह हमारी तो बख्शिश हो गई, मगर हमारा एक दोस्त है जो हम जिसने नमाजें हमारे साथ पढ़ी, हम गवाही देते हैं उसने रोजे रखे, या अल्लाह हम गवाही देते हैं वो हमारे साथ नेकियां करता था, ए अल्लाह उसे तूने जहन्नम में डाल दिया है क्योंकि उसके गुनाह ज्यादा होंगे, ए अल्लाह तेरी बारगाह में उसके लिए सिफारिश करते। वो बंदा अल्लाह से मान वाला झगड़ा करेगा और उस नेक शख्स को इजाजत दी जाएगी कि जाओ अपने दोस्त को जहन्नम से निकालकर जन्नत में साथ ले जाओ। अब यहां इस रिवायत से सीखने को क्या मिला कि यार जिंदगी में कोई एक दोस्त तो ऐसा बना ले कि जिसके बारे में ये उम्मीद हो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाएगा, अल्लाह ने इसको ऐसा मकाम दिया है, ये ऐसा नेक है कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेरी बख्शिश का जरिया बने और मेरी शफात करे। मगर क्या हमारे ऐसे दोस्त हैं? आज तो दोस्त ऐसे बनाए कि बंदा नमाज पढ़े तो दोस्त मजाक उड़ा रहे होते हैं, यानी वो दोस्त जो मुझे नेकी पर टॉन्ट करें, मैं इबादत की तरफ आऊं तो मजाक उड़ाए मेरा, मुझे वो दोस्त अच्छे लगते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लाइबल, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। हाँ, रिवायतों का मजमून है, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। एक और रिवायत यह है कि दोस्त दोस्त के दीन पर होता है। सोचे मैं किस दोस्त से दोस्ती कर रहा हूं। अच्छा कुछ लोग तो और आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं मेरा दोस्त गैर मुस्लिम है, मैं जानता हूं मेरे दोस्त के अकीदे ठीक नहीं है, मैं जानता हूं उसका अजीब सा ख्यालात है अल्लाह रसूल के बारे में, उसके सहाबा अहले बैत के बारे में, औलिया के बारे में बड़ी बकवास करता है, मगर वो उसका ईमान है, मैं तो सिर्फ खाना खाता हूं, रात को खेलते कूदते साथ हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जो अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में बुरी बात करे वो मेरा दोस्त हो कैसे सकता है? आपके माँ बाप के बारे में कोई बुरी बात करे दोस्ती करेंगे उससे? बताइए ना, आपकी माँ को गालियां दे और उम्मुल मोमिनीन के बारे में बुरी बात करे, आप कहेंगे यार ये तो उसका मसला है, मैं तो बस रात को डिनर को जाते हैं, चाय पीते हैं, दोस्ती है, बाकी उसका अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है। क्या जवाब दोगे आप कयामत के दिन उन सहाबा कराम अहले बैत और उन बुजुर्गान दीन को जिनके बारे में वो बकवास करता है? दोस्त दोस्त के दीन पर होता है, दोस्त वो बनाओ जो कयामत के दिन शफात कर सके, मगर शायद हम ऐसे दोस्त बना रहे हैं जो शायद कयामत में हमारी पकड़ का सबब ना बन जाए। बहरा आई कम टू टूवर्ड्स टॉपिक कि सूरह मुल्क सुबहान अल्लाह ये अल्लाह की बारगाह से शफात करवाएगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जो रोजाना रात को सूरह मुल्क की तिलावत करे जब वो कब्र में जाएगा और अजाब के फरिश्ते उसके कदमों की तरफ से आएंगे तो उसके कदम कहेंगे तुम्हारे लिए इधर कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो फरिश्ते उसके पेट की तरफ आएंगे, वो कहेगा तुम्हारे लिए मेरी जानिब से भी कोई रास्ता नहीं क्योंकि इसने मेरे अंदर सूरह मुल्क को याद कर रखा था। फिर वो उसके सर की तरफ आएंगे, कहा जाएगा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से भी कोई रास्ता नहीं क्यों, इसलिए कि ये रात सूरह मुल्क मुझसे ही पढ़ा करता था। तो पता चला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सुभान अल्लाह सूरह मुल्क को पकड़ लेना है, ये इंशाअल्लाह अजाब कब्र से बचाएगी। और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बड़ी कमाल की हदीस है, सहाबा ने उसको कितना सीरियस लिया, अब जरा आप गौर कीजिए, अल्लाह करे आज के इस बयान के बाद हम भी उसको उसी तरह सीरियस ले लें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स फौत हो गया, उसे सूरह मुल्क ही याद थी, जब उसे कब्र में उतारा गया तो अजाब का फरिश्ता आ गया, तो यह सूरत उसके सामने हो गई। फरिश्ते ने कहा तुम किताबुल्लाह हो और मुझे तुम्हारी बेअदबी पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इस मरने वाले के लिए और अपने लिए किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूं, अगर तुम इसे अजाब से बचाना चाहती हो तो मेरे साथ अल्लाह पाक की बारगाह में चलो और वहां जाकर सिफारिश करो। सूरह मुल्क उस फरिश्ते के साथ, अजाब के फरिश्ते के साथ बारगाह इलाही में हाजिर होगी। ये नबी पाक वाकया सुना रहे हैं और अर्ज किया है मेरे रब तेरे फुलां बंदे ने मुझे तेरी किताब से मुंतखब करके सीखा, मेरी तलावत की, ए अल्लाह क्या तू उसे आग में जलाएगा, उसे अजाब देगा हालांकि मैं इसके पेट में हूं? इलाही अगर तेरा यही इरादा है तो मुझे अपनी किताब से मिटा दे, अगर इसने मुझे याद किया है और तूने इसको जलाना है तो ए अल्लाह फिर मुझे अपनी किताब से मिटा दे। अल्लाह करीम फरमाएगा मैं तुझे नाराज होता देख रहा हूं। सूरह मुल्क ने अर्ज की नाराज होना मेरा हक है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जा मैंने इसे तेरे हवाले किया और इसके हक में तेरी सिफारिश कबूल की, चुनाचे वो वापस आ गई और अजाब का फरिश्ता खाली हाथ वापस चला गया। फिर सूरह मुल्क ने उस मैयत के मुंह पर अपना मुंह रखकर कहा क्या ही खूब ये मुंह है जो अक्सर मेरी तिलावत करता था, क्या ही खूब ये सीना है जिसने मुझे महफूज किया। फिर वो कब्र में उसका दिल बहलाती रहती ताकि उसे वहशत ना हो। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम अलैहि सलाम ने जब ये बात बयान फरमाई ना सहाबा में तो हर छोटे बड़े आजाद व गुलाम हर शख्स ने उस सूरत को सीख लिया। आप अलैहिस्सलाम ने इसका नाम मुंजिया यानी निजात दिलाने वाली सूरत रखा। जितने सहाबा थे बड़े छोटे सबने सूरत को याद कर लिया कि ऐसा मरने के बाद काम आने वाली सूरत है और इस तरह अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगी, तो सबने सूरह मुल्क जो है वो जनाब याद कर ली। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा अगर आप बार बार पढ़ेंगे वैसे भी वो याद हो जाती है, तो सूरह मुल्क को याद कर लें, उसको रोजाना पढ़ें और अपनी आदत में शामिल करें। अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में जो दावत इस्लामी से इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें ताल्लुक रखते हैं उनको फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत ने एक बहुत प्यारी बुकलेट दी है, 72 क्वेश्चंस हैं मर्दों के लिए, खवातीन के लिए 63 हैं और उन सब में एक टिक बॉक्स लगा हुआ है। अगर अभी तक आपने वो बुकलेट नहीं देखी है तो dawatislami.net से नेक आमाल आप लिखेंगे तो वो बुकलेट सामने आ जाएगी। इसकी एप्लीकेशन भी नेक आमाल के नाम से है, वो कमाल के क्वेश्चंस हैं, डेली हमें उसको टिक करना है कि हमने पूरा दिन कैसे गुजारा। उसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली है ताकि रोज़ाना आप टिक करेंगे तो इंशाल्लाह सूरह मुल्क की आदत बन जाएगी। अल्लाह हमें नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए सूरह मुल्क कुछ उसका मैसेज भी लेते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत बार हैं, हम उसको अंडरस्टैंड बाज़ुकात नहीं कर रहे होते, हालांकि कमाल के मैसेजेस हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्जे में ही सारी बादशाही है, यानी मुल्क कुदरत इख्तियार सब का सब अल्लाह पाक का है, वही इस शान का मालिक है जिसकी मर्जी इस कायनात में नाफिज है। एक शायर ने खूब कहा ना, किसी को सोचो ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। हम इंसानों की कमजोरी है, हमें कुछ ताकत इख्तियार मिल जाए तो अब हम क्या करते हैं, अब ख्वामखा तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। फिरौन को देखिए, उसे ताज व तख्त मिले तो खुद को खुदा कहने लग गया। नमरूद बदबख्त को इख्तियारात मिले तो खुदाई का दावा कर बैठा। ऐसे कितने गुजरे हैं और आज भी होंगे, ख्वामखा गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। बल्कि आज ऐसा है, छोटे मोटे फिरौन तो बहुत सारे घूम रहे होते हैं जिनको लगता है सब मैंने किया है, ये मेरा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे खिलाफ जो आए उसको मसल के रख दूंगा, मुझसे ऊंची आवाज में बात ना करो, मेरे बराबर में तुम नहीं बैठ सकते, अपनी औकात याद है कि नहीं। अल्लाह अकबर, ये जुमले कैसे जबान से निकलते हैं यार, हैं? तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हें पता है तुम कौन और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये जुमला तो ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं क्या कुछ लेकर आए दुनिया में। अरे तख्तो ताज वाले, बड़े बड़े महलात वाले जिससे रब नाराज हुआ, उन्हें उसने कैसे बर्बाद किया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सच्ची बात तो यह है कि हम बेबस हैं, हम आजिज हैं, हम नाकिस हैं, कितने किस्म के दायरे हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। कुरान क्या कहता है, अल्लाह अकबर, सूरह रहमान में आपने पढ़ा होगा,
या माशर अल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तफ़ज़ू मिन अक़्तारिस समावाति वल अर्ज़ फ़फ़ज़ू।
कहते ना मेरा सब कुछ है, एक दायरे से जरा निकल कर तो बताओ। कुरान कहता है जिन्नों और इंसानों के गिरोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ। नहीं निकल सकते, इस आसमान और जमीन के इस दायरे में हम कैद हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, हम ना माजी में पलट कर जा सकते हैं ना हम फ्यूचर में जा सकते हैं। एक लम्हा है हमारे पास, बस ये चंद सेकेंड जो है ना, बस उसी पर तो हम इख्तियार रखते हैं। हम टाइमलेस भी नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं हो सकता कि वक्त गुजरता रहे मेरा टाइम ना गुजरे, कुछ भी मेरे आपके इख्तियार में नहीं है, हम गो विद द फ्लो हैं, हमें जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही गुजारनी है। तो फिर अपनी बेबसी को याद रखे ना कि मेरी औकात क्या है जो मैं तकब्बुर करूं। अल्लाह अकबर, सूरह मुल्क में तकब्बुर करने वालों को कैसे झंझोड़ा गया, अपनी बेबसी कैसे याद दिलाई गई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल अरअयतुम इन असबह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन माईन, ये आखिरी आयत है ना सूरह मुल्क की। क्या फरमाया, तुम फरमाओ भला देखो तो अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन में धंस जाए तो वो कौन है जो तुम्हें निगाहों के सामने बहता हुआ पानी ला दे। गौर कीजिए, कितने मजबूर हैं कि हमारी जमीन का अगर पानी खुश्क हो जाए ना, हम इस लायक नहीं कि पानी निकाल सकें। हैं, अब ये तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाया, मगर फलसफी होते हैं। मसनवी ये मौलाना रूम ने लिखा कि एक फलसफी था, उसने ये कुरान की आयत सुनी, कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा अल्लाह कहता है कि पानी जमीन में धंस जाए तो कोई नहीं निकाल सकता, हम मशीन लाएंगे, बोरिंग के बड़े बड़े आले लाएंगे, साइंस को इस्तेमाल करेंगे, सारा पानी निकाल लेंगे, हमारे लिए क्या मुश्किल है, हैं? बड़ा तकब्बुर, बड़ा उसका जनाब गुरूर। रात वो शख्स सोया तो ख्वाब में एक ताकतवर शख्स आया और उसने इस फलसफी के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा, ऐसा चांटा मारा कि उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आईं, साथ ही आंखों में जो नूर का एक एक कतरा होता है ना, वो कतरा गिर कर जमीन में जज्ब हो गया, आंखों से निकला जमीन में जज्ब। ये सारा वाकया ख्वाब में हुआ। सुबह उठा तो उसकी दोनों आंखें बेनूर, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर, ख्वाब में आने वाले शख्स ने कहा था कि तू कहता है कि अल्लाह पानी जमीन में धसा दे तो हम आलात से निकाल लेंगे, तेरी आंखों का जो नूर का एक एक कतरा जमीन में जज्ब हुआ है ना, पहले वो निकाल के दिखा। सुबह हुआ तो आंखें नहीं थी, वो अंधा हो चुका था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसके गुरूर और तकब्बुर का सारा नशा उतर चुका था। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी बेबसी को याद रखना, हम कुछ भी नहीं, सब अल्लाह है, अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। अल्लाह कुरान में सूरह मुल्क में फरमाता है ना, अमिनतुम मन फिस्समाई अन यखसिफ बिकुमुल अर्ध फइदा हिया तमूर अम अमिनतुम मन फिस्समाई अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नदीर। क्या तुम उस अल्लाह से बेखौफ हो गए जिसकी सल्तनत आसमान में है इस बात में कि वो तुम्हें जमीन में दसा दे तो जमीन अचानक कांपने लगे, या तुम उससे बेखौफ हो गए जिसकी सल्तनत आसमान में है इस बात में कि वो तुम पर पथराव भेजे तो तुम जल्द जान लोगे कि मेरा डराना कैसा था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम तो अपनी सांसों पर भी इख्तियार नहीं रखते, अगर जमीन में दसा दिया जाए, आसमान से पत्थर बरसा दिया जाए, क्या बनेगा हमारा। तकब्बुर ना करें, ये जो बहुत सारी प्लानिंग्स के बाद दिल में ये ख्याल आता है ना कि एवरीथिंग इज सेट, इतना कमा लिया कि अब सातों पुश्तें खाएंगी, ये भूल है हमारी, रातों रात सब कुछ जा सकता है। लोग कहते हैं जनाब ऐसा बिजनेस करो जो 24/7 चलता है, हैं एयरपोर्ट पे काम होना चाहिए। अब कोविड में हमने देखा दुनिया भर के एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, हैं क्या क्या बंद नहीं हुआ। ये मैं बार बार बताया जा रहा है कि वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। हमारी प्लानिंग कुछ नहीं है, हमारा इरादा कुछ नहीं है। वो बंदे हमेशा कामयाब होते हैं जो जो ये बात जहन में रखते हैं कि जो कुछ है वो मेरे रब का है, जो दिया वो भी रब का है, और अल्लाह करीम मेरे लिए जो फैसला करेगा वो बेहतर है। आजजी के साथ, इनकिसारी के साथ, तकब्बुर से बच के जो लाइफ गुजारते हैं वही कामयाब होते हैं। अल्लाह करीम हम सबको आफतों से महफूज फरमाए। किसी को कुछ नहीं पता होता अगले लम्हे क्या होना है, फिर किस बात का इतराना है, फिर किस बात की तौबा में ताखीर है। खुदारा तौबा कीजिए, अल्लाह को राजी कीजिए, जिंदा ऐसे रहिए कि मरने की तैयारी साथ साथ हो कि अगर आज रात भी मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरा रब मुझसे राजी होगा। दुनिया का माल, दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया के ताल्लुकात सब इधर रह जाएंगे, मैं अकेला कब्र में जाऊंगा। आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा कि जो अरबोंपति मरता है उसकी कब्र में कोई छोटी सी तिजोरी भी साथ जाती है कि जनाब थोड़े 2-5 लाख डॉलर रख दो, इतने अरबों रुपए छोड़ के जा रहा है, थोड़े पैसे साथ ले जाए। कुछ नहीं कब्र में जाता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि 4,000 गज के बंगले में रहता था, यार अब इसका इंतकाल हुआ, इसकी तो कुछ 50 गज की कब्र बना दो। जनाब फुटपाथ पे मरने वाले की कब्र भी 2 गज की है, बंगले में मरने वाले की कब्र 2 गज की है। कभी नहीं देखा होगा कि यार ये बंदा सारी जिंदगी ब्रांडेड कपड़े पहनता रहा, अब मर गया है, इसको कोई रेशम का कफन ही पहना दो। नहीं जनाब, उसको भी दो वही कोरे लट्ठे का कफन पहनाया जाएगा जो एक लावारिस बंदे को कफन दिया जाता है। जब मेरी मंजिल वो है, मेरा लिबास वो है, मेरा आखिरी डेस्टिनेशन वो है, तो मुझे उस डेस्टिनेशन की तैयारी क्या करनी चाहिए कि वहां कुछ साथ नहीं जाएगा, वहां आमाल साथ जाएंगे, वहां रब राजी होगा, तो इंशाल्लाह मेरी अकबर और आखिरत बेहतर होगी।